मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं निहाल कुमार, आप छपरा बिहार से हैं, हिमांशु सिंह, आपका गांव है उपेंदा, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, और संदीप, आप हैदराबाद से हैं, हैदराबाद तेलंगाना से हैं। तो निहाल, हिमांशु और संदीप आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे बहुत ही सरल विषय पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ये सरल विषय आपको थोड़ा सा रोचक लगे और रोचक लगने के साथ साथ शायद आपको कुछ नई दृष्टि भी दे। और यह विषय है लोकतंत्र। यह विषय मैंने क्यों चुना है इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। पहले न्यूज एनालिसिस देख लें, और सच ये है कि आज के न्यूज एनालिसिस में बात करने के लिए कुछ विशेष नहीं है। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस पर आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार अखबारों में भी छप रहे हैं और चैनल्स पर भी बातें आ रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री बार बार किसानों को ये आश्वस्त कर रहे थे कि अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा वह उनके उत्पादन लागत का एटलीस्ट 1.5 गुना होगा। अब मित्रों जो 1.5 गुना जो उत्पादन लागत का होना है इसका कैलकुलेशन बड़े अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि किसान की जब आप लागत का कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल यह है कि उसमें आप किन किन बातों को, किन किन चीजों को जोड़ेंगे। देखिए एक तो इनपुट है, यानी कि खाद डाल रहा है, बीज डाल रहा है, दवाइयां डाल रहा है, ये एक पक्ष हो गया उसका, राइट। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष है कि किसान का परिवार उसमें उस पर काम कर रहा है। अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और 4 महीने तक काम किया उन्होंने, तब जाकर के उन्होंने अनाज पैदा किया है, तो बट नेचुरल है कि उसमें 4 लोगों की मजदूरी होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। अब वो सरकार डालती है कि नहीं डालती है? अभी तक यही प्रॉब्लम थी कि सरकार इसे न डाल करके उनको इनपुट ले लेती थी कि जो जो चीजें उसके बाहर से खरीद करके उसने लगाई हैं उसकी कीमत कितनी हुई, और उसका फिर एक खास प्रतिशत वो निर्धारित कर देती थी। तो इस बार उन्होंने किया है कि जो इनकी लाग, जो श्रम है, श्रम की लाग, श्रम को भी एक लागत के रूप में माना गया है। इसमें एक बात और भी है, और वो बात है कि जैसे किसान बैंकों से ऋण लेता है तो ऋण पर वो ब्याज भी देता है, तो सवाल यह है कि जो ब्याज दे रहा है उस ब्याज को लागत में जोड़ा जा रहा है या नहीं जोड़ा रहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फिक्स किया जाता है उसके बहुत से फार्मूले हैं, 3 बेसिक फार्मूले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन 3 बेसिक फार्मूलों को अच्छे से देख लें, थोड़ा सा समझ लें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सरल सा है, और उनके अपने नाम है ये आपको मालूम होने चाहिए। फिलहाल जो उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है उसका लोगों ने उसको वेलकम किया है, और उम्मीद है कि शायद किसान भी उसको वेलकम करेंगे। पिछले जब जो घोषित होते रहे उनकी तुलना में उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि इस तरह के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं होना है। इस समस्या का मतलब जो किसानों की मूल समस्या है उसका समाधान नहीं होना है, और इससे कोई कृषि लाभ का काम नहीं बन जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है मित्रों, मैं बीच बीच में गांव में जाता हूं और लोगों से मिलता भी हूं, उनसे बातचीत भी होती है सरपंच वगैरह से, तो वो कहते हैं कि ठीक है सरकार ने मूल्य तो घोषित कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि उस मूल्य पर खरीदने वाला कहां है, कौन खरीद रहा है, हम बेचें किसको, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जो शहर के आसपास के किसान हैं उनको मंडियां मिल जाती हैं, वो थोड़ा बहुत जाकर के अपनी चीजें बेच भी लेते हैं, लेकिन खरीदी होती ही नहीं है। और जब सरकार अपने लिए अपनी तरफ से खरीदने की बात करती है, आपको मालूम है कि सरकार भी खरीदती है क्योंकि वो बफर स्टॉक रखती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत भी उसको कुछ खाद्यान्न खरीदने होते हैं, तो उसकी भी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जितना हमारा उत्पादन हो रहा है। उतना वो खरीद सके। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने, कुछ राज्यों ने ये नियम बनाया हुआ है कि आप मार्केट भाव से बेचिए। जैसे मान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2000 रुपए, मार्केट में वो बिक रहा है 1500 रुपए का, तो 500 रुपए का फर्क, किसान को 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो कुछ राज्यों ने यह नियम बनाया हुआ है कि वो जो 500 रुपए मार्केट रेट से और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो फर्क है, वो से राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी। तो किसी किसान का कितना उत्पादन हुआ, इसका कैलकुलेशन वो उनके लैंड एरिया से करके और उतनी भरपाई सरकार किसानों को कर देती है और उनके खाते में उतना पैसा डाल देती है। कहीं कहीं ये व्यवस्था भी काम कर रही है, लेकिन सभी जगह नहीं। और देखिए, जो छोटे छोटे किसान है बेचारे, वो कहां ऐसा कर पाते हैं, और सबसे बड़ा संकट तो उन्हीं का ही है। तो लोगों का कहना है, जो इसके एक्सपर्ट है, कि इसके बारे में सरकार को थोड़ा सा व्यावहारिक कदम उठाना चाहिए कि सरकार खरीदी सुनिश्चित करे, सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाए, तो इससे किसानों को सही मायने में स्थायी रूप से लाभ पहुंच सकेगा। तो जो किसानों की समस्या है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए, बजाय इसके कि उसका अस्थायी समाधान हो। मित्रों, इस नो डाउट कि जब सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है तो उसका सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी वगैरह जो सरकार देती है उसमें बढ़ोतरी होगी, सरकार को खरीदी अपने रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि सरकार भी चीजें खाद्यान्न खरीदती है, तो राजकोष पर बोझ तो आएगा। तो फिलहाल इस विषय पर तो मित्रों इतना ही। आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर बात करते हैं। जो मैंने मुख्य विषय चुना है, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि वो अभी दिल्ली राज्य को लेकर के संविधान पीठ ने कल जो फैसला दिया है, वही मेरे आज के विषय की व्युत्पत्ति का आधार है, वहीं से मैंने इस विषय को उठाया है। लेकिन देखिए, मैं इस विषय में दिल्ली राज्य पर बात नहीं कर रहा हूं, और ऐसा मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली राज्य के बारे में अखबारों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और बकायदे इस पर आप लेख भी आएंगे, आप देखेंगे, और बकायदे एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, आने शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड भी कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि जो दिल्ली राज्य की जो व्याख्या दिल्ली राज्य को लेकर के, अब देखिए, दिल्ली राज्य में जो झगड़ा था वो दो लोगों के बीच था। मैं अब इसको सैद्धांतिक रूप में आपके सामने रख रहा हूं, है ना। एक था चुनी हुई सरकार, निर्वाचित सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निर्वाचित, जो जनता है उसके चुने, उसने जिन लोगों को चुन करके भेजा उनके हेड हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है, ये निर्वाचित है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र यही है। दूसरी तरफ वहां थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें हम उपराज्यपाल कहते हैं। उपराज्यपाल के अधिकार जो है तो राज्यपाल से थोड़े से अधिक होते हैं, और दिल्ली का चूंकि दर्जा राज्य का एक अलग तरीके का है, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो वहां उपराज्यपाल को थोड़े से अतिरिक्त अधिकार है, ज्यादा अधिकार है। इस मायने में आपको थोड़ा सा दिल्ली के उपराज्यपाल को दूसरों से अलग करके देखना होगा, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। और उसका कारण यह है कि क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और उसका बहुत सा एरिया है जहां वीवीआईपीज रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार कह लीजिए कि केंद्र कुछ अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। तो सामान्यतया तो आप जानते हैं कि जो राज्य सरकार है, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं वो उनके अधीन होते हैं, लेकिन दिल्ली के मामले में तीन जो अधिकार हैं, याद रखिए, वो उपराज्यपाल के पास है, तीन, ये आपको याद हो जाने चाहिए। पहला तो यह है कि भूमि, जमीन संबंधी जितने भी अधिकार हैं वो उपराज्यपाल के पास है। दूसरा पुलिस, पुलिस उपराज्यपाल के अधीन है, याद रखिए, राज्य सरकार के अधीन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है। और तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, यह भी उपराज्यपाल के अधीन है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था यदि कि कोई भारत में ही है, दुनिया के और भी जो दूसरी राजधानियां हैं वहां भी इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो ये कोई, मतलब आप ये मत मान करके चलिए कि यह जानबूझ करके केवल भारत के ही संदर्भ में किया गया है। पिछले समय, कुछ समय से आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में एक जबरदस्त तनाव चल रहा है। और तनाव यह है कि तनाव इसी बात को लेकर के था कि भाई सरकार आखिर में है किसकी। जैसे चुनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं केजरीवाल साहब, ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, इनका जो कैबिनेट डिसीजन, जो भी इनकी कैबिनेट डिसीजन ले रही है उसे उपराज्यपाल या तो खारिज कर दे रहे हैं या खारिज नहीं कर रहे हैं तो उसे वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेज दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति हो गई, हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं कि इसमें फॉल्ट किसका है, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो जो विशेषज्ञ है केवल इसी तथ्य को लेकर के जो बात करेंगे उनको करने दीजिए। सवाल यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक मुख्यमंत्री हैं जो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, एक उपराज्यपाल हैं जो आप कह लीजिए कि उस तरह से तो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है, लेकिन वो दूसरी तरफ राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या इसे दूसरी भाषा में अगर आप और सरलीकरण करना चाहें, जो कि एग्जैक्ट शब्द तो नहीं होगा लेकिन केवल समझाने के लिहाज से मैं कहूं, तो आप कह लीजिए कि एक नौकरशाही का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, जहां राजा सब कुछ होता है वो राजतंत्र कहलाता है, जहां सिविल सर्वेंट्स की चलने लगती है, ब्यूरोक्रेसी की चलने लगती है तो उसे आप नौकरशाही तंत्र कहने लगते हैं, और जहां लोगों की चलने लगती है उसे आप लोकतंत्र कहते हैं। तो लोक सीधे शासन नहीं चलाता है, जो लोक शासन चलाएगा बट नेचुरल है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाएगा। उसके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, और फिर वे अपना मुखिया चुनते हैं, फिर वो जिनका मुखिया है वो सरकार बनाता है और सरकार चलाता है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, किसी भी राज्य में हो, अगर मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, उसे अपनी छोटी छोटी बातों के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो उसे चाहे आप केंद्र का प्रतिनिधि मान लें या चाहे आप नौकरशाह मान लें, तो सीधी सी बात है कि जो लोग चुनकर के गए हैं वो वहां फिर असहाय से दिखाई देंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो पूरी तरह से आप केंद्र कह लीजिए या नौकरशाह कह लीजिए उसकी मर्सी पर है कि वो किन चीजों को पसंद करता है, किन चीजों को नापसंद करता है। चलिए, हमारे सामने संविधान है, कानून है, उसके तहत काम करना एक अलग बात है, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जो उससे भी परे होती हैं। एक शब्द आपने सुना है संविधान की आत्मा, है ना, संविधान की आत्मा, और एक है संविधान। तो संविधान और संविधान की आत्मा में फर्क क्या, क्योंकि संविधान की आत्मा नाम का कोई अलग से अनुच्छेद या चैप्टर हमारे संविधान में है नहीं कि भैया ये संविधान की आत्मा है, वो धीरे धीरे विकसित होती गई है। तो संविधान की आत्मा आप किसे कहेंगे, बेसिकली लोकतंत्र का जो सार है वही संविधान की आत्मा है। लोकतंत्र का सार क्या है, जो सत्ता है वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के हाथ में केंद्रित नहीं है, जो सत्ता है वो अल्टीमेटली लोगों के हाथ में है, जिनके लिए सत्ता है, सत्ता लोगों के लिए होती है, उन्हीं के हाथ में सत्ता है, ये लोकतंत्र का सार तत्व है। और इसी सार तत्व को केंद्र में रख करके संविधान बनाया गया है। अगर लोकतंत्र एक ही तरह का होता, या लोकतंत्र केवल संविधान ही होता, या लोकतंत्र केवल कानून व्यवस्था ही होती या विधि विधान ही होते, तो दुनिया में हर जगह एक ही तरह का लोकतंत्र होता, लेकिन वो तो नहीं है ना। आप देखिए कि लोकतंत्र के कितने रूप दिखाई दे रहे हैं। सवाल संविधान के स्वरूप का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की आत्मा का है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्याख्या की है, इनफैक्ट सच पूछिए तो लोकतंत्र की इस आत्मा को ध्यान में रख करके ही उसने अपनी व्याख्या की है। तो मित्रों, थोड़ा सा हट करके मैंने आपसे बातें की हैं और मुझे विश्वास है कि इसे लोकतंत्र के प्रति जरूर आपके दिमाग में कुछ नए तथ्य आए होंगे या एक नई दृष्टि विकसित हुई होगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं प्रभात कुमार माचवे अलीगंज बिहार से और विपिन वर्मा, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।